अथ चतुर्थो अध्यायः। आप निरंतर आशुतोष कृष्ण शास्त्री से मनुस्मृति श्रवण कर रहे हैं। आज से चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ होता है। मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय में भगवान मनु गृहस्थांतर्गत आजीविका एवं व्रत के विषयों को कहते हैं कि आयु के द्वितीय भाग में अर्थात 25 वर्ष की अवस्था के बाद गृहस्थ धर्म लेना चाहिए। चतुर्थमायुषो भागम उषित्वाद्यं गुरौ द्विजः द्वितीयमायुषो भागम कृतदारो गृहीवशीत्। अर्थात द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पहले आयु के चौथाई भाग तक गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करे, तत्पश्चात द्वितीय भाग में यानी कि 25 वर्ष की अवस्था के उपरांत विवाह करके घर में निवास करे। दूसरे श्लोक में भगवान गृहस्थी की पड़ पीड़ा रहित जीविका को ही बताते हुए कहते हैं, अद्रोहेणैव भूतानां अल्पद्रोहेण वा पुनः या वृत्तिस्ताम समास्थाय विप्रो जीवेदनापदी। द्विज व्यक्ति आपत्ति रहित काल में दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे अथवा ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में जिसमें प्राणियों को कम से कम पीड़ा हो, जो वृत्ति आजीविका हो, उसको अपना कर जीवन निर्वाह करे। तदुपरांत तृतीय श्लोक में भगवान धन संग्रह जीवन यात्रा चलाने के मात्र के लिए ही कहते हैं, यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थम स्वी कर्म भिरगैर्गर्हित अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम्। स्वयं आगत कर्म भी अपने आनंदित अर्थात श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा शरीरस्य अक्लेशेन शरीर को अधिक कष्ट न देते हुए यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थम केवल जीवन यात्रा को चलाने के उद्देश्य मात्र से अर्थात जीवन कष्ट रहित रूप से चलता रहे और उससे अधिक ऐश्वर्य भोग की कामना न हो, धनम संचयम कुर्वीत धन का संचय करे। जीविकाओं के भेद के बारे में बताते हुए भगवान मनु 4-5-6 श्लोकों में कहते हैं, ऋतामृताभ्याम जीवेतु मृतेन प्रमतेन वा सत्यानृताभ्यामपि वा न स्वक्त्या कदाचन। ऋत ऋताभ्याम ऋत या अमृत से, अमृतेन वा प्रमतेन मृत या प्रमत से, अथवा सत्य अनर्तभ्याम अपि सत्य नत जीविका से जीवे जीविका चलाए। स्ववृत्या कदाचन न, किंतु स्ववृत्ति किसी की सेवा करके उसके आश्रित रहते हुए चापलूसी पूर्वक जीवन बिताने के लिए जीवन निर्वाह न करे। पंचम श्लोक में भगवान कहते हैं, ऋतमुक्षशीलं गेयं अमृतं स्यादयाचितं मृतं तु याचितं भैक्षं प्रभत्यं करसणं स्मृतं। उक्षशीलं ऋतं गेयं, उक्ष अर्थात कटे हुए खेत में पड़े हुए दाने जिनकी अगलियों से बीना जाए, उसे और सिले सिल कटे पेड़ में रह जाने वाली बालियों को चुनकर जीविका चलाने को अवृत समझना चाहिए। अयाचितम अमृतम स्यात्, बिना मांगे प्राप्त होने वाला धन अमृत जीविका होती है। याचितम भैच्छुतुमृतम, भिक्षा मांग कर जीविका करना मृत और कर्षणम प्रमतम स्मृतम, खेती करना प्रमत जीविका कही गई है। अर्थात ऋत, अमृत और मृत और प्रमत, ये प्रकार इस प्रकार चार प्रकार की जीविकाओं के बारे में भगवान पंचम श्लोक में बताते हुए खष्ट श्लोक में कहते हैं, सत्यानृतम तु वाणिज्यम तेन चैवाप्यजीव्यते सेवा सुवृतिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत। वाणिज्यम तो सत्यानृतम, व्यापार को सत्यानृत कहते हैं। तेन च एव अपि जीव्यते, इसके द्वारा भी जीविका चलाई जा सकती है। सेवा स्ववृत्ति ही आख्याता, दूसरे की सेवा करके उसके आश्रित रहते हुए चापलूसी पूर्वक जीवन बिताना स्ववृत्ति कहलाती है। तस्मात वह कुत्ते जैसी वृत्ति है, इसलिए ताम उस आजीविका को परिवर्जयेत छोड़ देवे। धान्य संग्रही के भेदों के बारे में भगवान सप्तम एवं अष्टम श्लोकों में बताते हैं, कुसूल धान्यको वा स्यात् कुंभधी धान्यकैव वा त्रेहैः को वापि भवेत् अश्वस्तनिकैव यावा चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनां ज्यायान्न परः परो गेयो धर्मतो लोकजित्तमः। द्विजः कुशूल धान्य का हवा स्यात्, चाहे अन्न भंडार में धान्य संग्रह करने वाला हो अथवा मिट्टी के बृहदाकार घड़े में धान्य संग्रह करने वाला हो अथवा तीन दिन के भरण पोषण के योग्य धान संग्रह करने वाला हो अथवा अश्वतनिकः एव भवेत्, केवल एक ही दिन के धान्य को रखने वाला हो, इन चारों प्रकार की गृहस्थी द्विजों में परह परह जायांगे यह बाद बाद वाले को बड़ा या श्रेष्ठ समझना चाहिए। लोक जित्तमः, क्योंकि वह संयम अपरग्रह आदि धर्मों से पालन से इस लोक को जीतने वाला है। खडकर्मो भवे तेषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते द्वारामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति। एषां एकः खटकर्मं भवति, इनमें से एक छह कर्मों से जीविका चलाने वाला, अन्यः त्रिभिः प्रवर्तते, दूसरा तीन कर्मों से जीविका चलाने वाला, एकः द्वाभ्याम और तीसरा दोनों कर्मों में, तू और चतुर्थः ब्रह्मसत्रेण जीवति, चौथा केवल वेदाध्ययन से ही जीविका चलाता है। वर्तयंश शिलोक्षाभ्याम अग्निहोत्र परायणः इष्टि पार्वायतानां तिया केवला निर्वपे सदा। शिलोक्षाभ्याम वर्तयन, शिल और उक्ष से जीविका करने वाला द्विज भी अग्निहोत्र परायणः, अग्निहोत्र करने में तत्पर रहे, सदा सदैव केवलाः पर्वतानां तिया इष्टि निर्ववेत, पर्व और वर्ष के अंत में होने वाले दश पौर्णमाश आदि यज्ञों को करता रहे। ग्यारहवें श्लोक में भगवान शास्त्र विरुद्ध जीविका नहीं होनी चाहिए इस प्रकार वर्णन करते हुए बताते हैं, नलोक व्रतम वरतेत वृत्ति हुए तो कथंचन अजिभ्याम सठाम शुद्धाम जीवित ब्राह्मण जीविकाम। गृहस्थ वृत्ति हेतु जीविका के लिए भी लोक वृत्तम न वर्तेत, कभी शास्त्र विरुद्ध लोक चकार का वर्ताव न करे, क्योंकि जिसमें अजिह्वाम सठाम शुद्धाम किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन व अधर्म न हो। ब्राह्मण जीविकाम जीवित उस वेदोक्त कर्म संबंधी जीविका को करे, सुख संतोष का मूल है। इस बारे में भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं, संतोषम परमार्थस्य संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् संतोषमूलं हि दुःखं दुःखमूलं विपर्ययः। सुखार्थी अर्थात सुख चाहने वाला व्यक्ति परमं संतोषम आस्थाय अत्यंत संतोष को धारण करके संयतः भवेत्। संयत अधिक धन के लिए सुख का आधार है। संग्रह की इच्छा न करे, क्योंकि संतोष मूलम सुखम संतोष ही सुख का आधार है। विपर्ययः उससे उल्टा अर्थात असंतोष दुख मूलम दुख का आधार है। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक से 259वें श्लोक तक भगवान मनु स्नातक गृहस्थियों के व्रतों का विधान करते हुए कहते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि गृहस्थों के लिए सतोगुण वर्धक व्रतों के बारे में, अतोन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः स्वर्गास्य यशस्यानि व्रतानि नानि धारयति। अतः इसलिए स्नातकः द्विजः स्नातक द्विज निर्धारित व्रतियों में से अपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ आजीविका में जीवन निर्वाह करते हुए स्वर्ग मायुष्य यशस्यानि इमानि व्रतानि धारयेत्, सुख आयु और यश देने वाले इन व्रतों को धारण करे। वेदादिकं स्वकं कर्मं नित्यं कुर्यादतिन्द्रितः तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्। ब्राह्मणादि द्विज वेदोदितं स्वकं कर्मं वेदोक्त अपने कर्मों को अतीन्द्रियः नित्यं कुर्यात् आलस्य को छोड़कर नित्य क्रिया करे, क्योंकि तत हि यथाशक्ति कुर्वन् उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए परमां गतिं प्राप्नोति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। अधर्म से धन संग्रह न करे, इस बारे में भगवान बताते हैं, नेहेतार्थान प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा न विद्यमानेश्वरथेसु नात्यमपि यतस्ततः। अर्थात प्रसंगेन अर्थात नहीं हते, प्रसंगेन अर्थान नहीं हते, किसी किसी दुष्ट प्रसंग में द्रव्य संचित न करे। न विरुद्धेन कर्मणा और विरुद्ध कर्म से न विद्यमानेषु अर्थेषु यतस्ततः न विद्यमान पदार्थ को होते हुए उनको गुप्त रख के अथवा दूसरे से छल करके न अर्थ्यामपि चाहे कितनी ही दुख पड़े तदपि अधर्म से द्रव्य का संचय कभी मत करे। भगवान मनु 16वें श्लोक में इंद्रियाशक्ति का निषेध करते हुए कहते हैं, इंद्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः अतिप्रशक्तिं चैतेषां मनसा सन्निवर्तयेत। सर्वेषु इंद्रियार्थेषु कामतः न प्रसज्येत, इंद्रियों के विषयों में काम से कभी न फंसे। एतेषां मति प्रसक्तम विषयों की अति प्रशक्ति अर्थात प्रसंग को मनसा सन्निवर्तयेत, मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे। स्वाध्याय से कृतकृत्यता का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, सर्वान् परिज्येत अर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः यथा तथाध्यापयांस्तु साहरस्य कृतकृत्यता। स्वाध्यायस्य विरोधिनः सर्वान् अर्थान् परित्यजेत। जो स्वाध्याय और धर्म विरोधी व्यवहार या पदार्थ हैं उन सबको छोड़ देवी। यथा तथा अध्यापनम नतु, जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ता रहना ही साही अतस्य कृतकृत्यता, गृहस्थ को कृतकृत्य होना चाहिए। 18वें श्लोक में भगवान स्वाध्याय के विस्तृत अर्थ के बारे में बताते हुए कहते हैं, वयसः कर्मणोर्थस्य श्रुतस्याभिचनस्य च वेशवाग्बुद्धिशारूप्य माचार विचरन्नहि देहि। अर्थात वयसः कर्मणः अर्थस्य श्रुतस्य च अभिजनस्य, अपने आयु कर्म धन वेद और कुल के अनुसार वेशवाक बुद्धि सारूप्य आचरण, वेशवाणी और बुद्धि का व्यवहार करता हुआ इस संसार में विचरित विचरण करे। अगले श्लोक में बुद्धि वृद्ध्य कराण्याशु धनान्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांशैव वैदिकान्। अर्थात हे स्त्री पुरुषों, तुम धान्यानि आशु बुद्धि वृद्धि करणानि च हितानि शास्त्राणि, जो धर्म धन और बुद्धियादि को अत्यंत शीघ्र बनाने हारे हितकारी शास्त्र हैं उनको, और वेदिकान निगमान वेदों के भागों की विद्याओं को नित्यम अवेक्षेत, नित्य देखा करो। यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है वैसे वैसे अधिक जानता है और उसकी प्रीति विज्ञान में होती जाती है। ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वता नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति हापयेत। ऋषियज्ञ देवयज्ञ बलिवैश्व देवयज्ञ अतिथियज्ञ और पितृयज्ञ इनको सदा ही जहाँ तक हो कभी न छोड़ना चाहिए। एतानेके महायज्ञान यज्ञशास्त्रविदो जना अनीहमाना सततमिन् इन्द्रियेष्वेषु जुह्वति। एक ही यज्ञशास्त्रविदाह जना, कोई कोई शास्त्र यज्ञ के वेत्ता लोग, एतान महायज्ञान अनीहमाना, इन महायज्ञों को न करके पांच इंद्रियों में ही सदा हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय में आसक्त नहीं होने देते। वाचेके ज्विहतिं प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञ निर्वर्तिमाक्षया। भगवान कहते हैं कि कोई कोई प्राणी वाणी और प्राण को ही अक्षयाम यज्ञ निर्वेति पश्यन्तः, यज्ञ के अक्षय फल का प्राप्त होना मानकर सदा ही वाणीम प्राणिम च प्राणे वाच्यम जुह्यति, वाणी में प्राण का और प्राण में वाणी का हवन करते हैं, अर्थात प्राण और वाणी का संयम करते हैं। ज्ञानेनैव वापरे विप्रान् त्यजन्तैतैर्मखै सदा ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानमक्षुषा चक्षुषा। अपरे विप्राह, कुछ विद्वान ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र से ही एषां ज्ञानमूलां क्रियां पश्यन्तः, इन ज्ञानमूलक क्रियाओं की उत्पत्ति को देखते हुए ज्ञानेन एव एतैः मखैः यजन्ति, ज्ञान से ही इन पंच महायज्ञों को करते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान में ही तल्लीन रहते हैं। अग्निहोत्र का विधान करते हुए भगवान मनु कहते हैं, अग्निहोत्रम च जुहियाद आद्यन्ते द्विनिशो सदा दर्शेन चार्धमाशन्ते पौर्णमाशेन चैव हि। अर्थात गृहस्थी प्रतिदिन दिन रात के आदि और अंत के अर्थात प्रातःकाल संधि बेलाओं में अग्निहोत्र की करे और अर्धमाशान्ते आधे मास के अंत में दर्श यज्ञ अर्थात अमावस्या का यज्ञ करे। एव ही पौर्णमासेन, इसी प्रकार मास के पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे। शयान्ते नवसप्तेष्टा तर्थवन्तेन्द्विजोध्वरै पशुना त्वयनस्याद समान्ते शौमिकैर्मखः। अगले श्लोकों में भगवान बताते हैं 26वें श्लोक में कि द्विज को चाहिए कि सेनान्ते नवसेष्टया अन्न पकने के बाद नवसस्येट यज्ञ करे, अर्थात ऋतु अंते अध्वरई और उसी प्रकार ऋतुओं की समाप्ति पर ऋतु यज्ञ करे। अयनस्य आदौ तु पशुना, अयनों के आदमी पशु यज्ञ करे। समान्ते शामिकई मखई, वर्षों के अंत में अग्निष्ट होम आदि करे। भगवान कहते हैं 27वें श्लोक में कि नानिष्टवा नवसेष्टा पशुना चाग्निमाद्विजः नवासन्यमद्यामांशं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः। अर्थात दीर्घम आयुः जिजीविषुः अग्निमान् द्विजः, लंबी आयु की कामना करके अर्थात लंबी आयु की कामना करने वाला अग्निहोत्री द्विज नवसष्टेष्टा चपसुना अग्निनिष्ठवा नवसष्टेष्ट यज्ञ और पशु यज्ञ किए बिना नवम अन्नम मांसम न द्यात, नए अन्न और मांस को न खाए। नवे नार्चिता ह्यस्य पशुहव्ये न चाग्नयः प्राणानि वात्तुमिच्छन्ति नवान्नामिर्षगर्धिनः। क्योंकि नवीन पशुहव्येन अर्चिना अर्चिता नए अन्न और नए पशुमांस के बिना पूजी हुई अग्नियः यज्ञाग्नियः अन्न नवान्नः आमिर्षगर्धिनः, इस नए अन्न और मांस के खाने की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों के प्राणान एव अत्तुम इच्छन्ति, प्राणों को ही खाना चाहते हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि आतिथ्य सत्कार का क्या विधान होना चाहिए। आसनासन सय्याभिर्रद्भिर्मूलफलेन वा न से कच्चिद् वसेद् गेहे शक्तिदो नर्चितोर्थतिहि। अस्य गेहि, इस गृहस्थी के घर में कश्चित अतिथि, कोई भी अतिथि शक्तितः शक्ति के अनुसार आसन असन सैया भी आसन भोजन बिछौना आदि से अथवा अदभि मूलफलेन जलकंद मूल आदि अनर्जितः न वशेत, बिना सत्कार किए न रहे, अर्थात यथाशक्ति सबका सत्कार करना चाहिए। भगवान अगले श्लोक में अर्थात 30वें श्लोक में अयोग्य व्यक्तियों के बारे में कहते हैं पाखिंडिनो विक्रमर्स्था विडालय व्रतिकांक्षठान हेतुकान बकब्रवीश्चद्वां मात्रेणा पिचापि नार्चयेत। पाखंडिनः अर्थात पाखंडी, विकर्म स्थान वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले, वैडाल व्रतिकान विडाल वृत्ति वाले, शठान हैतुकान बकवादी और बकवृत्तीन बगुला भगत मनुष्यों को वांग मात्रेण अपिनार्चयेत, वाणी से भी सत्कार नहीं करता चाहिए। यहाँ पर भगवान पाखंडी का अर्थ वेद निंदक, वेद विरुद्ध आचरण करके करने हारे विकर्मस्थ, जो वेद विरुद्ध कर्म का कर्ता, मिथ्या भाषण आदि युक्त जैसे बिड़ाल छिप और स्थिर रहकर ताकता ताकता झपट से मूस पर प्राणियों को मार अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम बैडाल वृत्ति है। षठ अर्थात हठी, दुर्ग्रही, अभिमानी, आप जाने नहीं, औरों का कहा नहीं माने नहीं, हैतुक, कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले, जैसे आजकल के वेदांती बकते हैं, हम ब्रह्म और जगत मिथ्या हैं, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि गपोणी हाँकने वाले बकव्रक्ति, जैसे बक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वैसे आजकल के वैरागी और साखी आदि हठी, दुराग्रही, वेद विरोधी हैं। ऐसे लोगों का सत्कार वाणी मात्र से भी नहीं करना चाहिए। सत्कार के योग्य व्यक्तियों में के बारे में भगवान कहते हैं, वेद विद्या व्रतस्नात क्षोत्रियों ग्रह मेधिनः पूजयेत् भव्यकव्येन विपरीतांश वर्जयेत। अर्थात वेद विद्या व्रतस्नातान, वेद विद्या के विद्वानों को ज्ञानों और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके स्नातक बने, उनका श्रोतियान ग्रह मेधिनान, वेद पाठी, वेद ग्रहता, गृहस्थियों की का हव्य कव्येन भोज्य पदार्थों और वस्त्रदान आदि से पूजयेत, सत्कार करना चाहिए। विपरीतान चवर्जयेत, और जो इसके विपरीत हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर हव्य कव्य के शब्दों का विवेचन करते हुए ब्राह्मण कहते हैं कि हव्य कव्य के संबंध में परवर्ती टीकाकारों भाष्यकारों को पर्याप्त भ्रांति रही है। वे परवर्ती पौराणिक रूढ़ार्थों के आधार पर इन्हें मृतक, पितृसाद आदि के साथ जोड़ते हैं। मनुस्मृति में इसका अर्थ मृतक साध्य आदि से संबंधित नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि मनु मृतक साध्य को नहीं मानते, यह श्लोकों से सिद्ध है। मनुस्मृति में इसके धात्वनुसारी अर्थ है हु दाना दानयो, अर्थात अत्तव्यम द्रव्यम दातव्यम दानिकम वा हव्यम, धार्मिक विद्वानों को भोज्य पदार्थों का भोजन आदि दान हव्य कहलाता है। कव्य के बारे में भगवान कहते हैं, यहाँ पर विद्वान इसका अनुशीलन करते हुए कहते हैं, काव्य हितार्थ प्रदत्तम दिव्यम, विद्वानों के हित में दिए गए जाने वाले धन वस्त्र आदि दान को कव्य कहते हैं। किंतु यहाँ हव्य कव्य का युग शब्द के रूप में प्रयोग होता है, वहाँ इसका समन्वित और विस्तृत अर्थ होता है। विद्वानों को दान में दिए जाने वाले भोजन, छादन, उपहार आदि संबंधी सभी पदार्थ। अगले श्लोक अर्थात 32वें श्लोक में भगवान भिक्षा एवं बलि वैश्वदेव का विधान करते हैं। शक्षितो तो पचामानेभ्यो दातव्यो ग्रहमेधिना सविभागंश भूतव्यः कृतव्यो अनुपरो धर्मः। अर्थात ग्रहमेधिना, गृहस्थी को शक्तितः अपचमानेभ्यः, अपने हाथ से जो पका नहीं सकते, ऐसे ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि को दातव्यम, अन्न देना चाहिए। और अनुपरोधतः, जिससे परिवार के भरण पोषण में बाधा न पड़े, इस प्रकार भूतेभ्यः सविभाग कर्तव्यः, प्राणियों, असहाय विकलांग मनुष्यों तथा कुत्ता पक्षी आदि के लिए भोजन का भाग भी निकालना चाहिए। अगली श्लोकों में अर्थात 33वें श्लोक में भगवान भूख में व्याकुल होकर राजा से धन ग्रहण करने के बारे में विधान करते हुए कहते हैं, राजतो धनमन्विक्ष संसेद स्नातक क्षुदा याज्ञान्ते वासिनोर्वापि व्यंतत इति स्थितः। स्नातक भूख से पीड़ित होता हुआ राजा से अथवा यजमान अथवा किसी शिष्य से धन मंगा ले और किसी से मांगे नहीं, ऐसी मर्यादा है। नसीदे स्नातको विप्रह क्षुधा शक्त कथंचन न जीर्णमलवद्वाष भवेच विभवे सती। स्नातक विप्र, स्नातक विद्वान भूख के वशीभूत होकर कभी भी दुखी न हो और धन होने पर फटे पुराने और मैले कपड़ों में न रहे, क्योंकि भगवान अगले श्लोकों में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्नातक को चाहिए हमेशा वह स्वाध्याय में निरत रहे। कृप्तकेश नखमश्रु शुदन्ति शुक्लाम्बरः शुचिः स्वाध्याये चैव युक्तः स्यान् नित्यमात्महितेषु च। कृप्त केश नखः मृसुः, केश नाखून और दाढ़ी कटवाता रहे, दान्तः अर्थात संयमी रहे, शुक्लाम्बरः स्वच्छ वस्त्र को धारण करे, शुचिः शुद्धता रखे और नित्यम स्वाध्याये च आत्महितेषु युक्तः स्यात्। प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय और अपनी आत्मा की उन्नति में लगा रहे। अगले श्लोकों में भगवान लाठी कमंडल इत्यादि का विधान करते हुए कहते हैं, वैणवी धारये द्यष्टि सोदकं च कमंडुलम यज्ञोपवीतं वेदं च सुभेरोक्म च कुंडले। वैष्णवी यष्टिम धारयेत, बांस की लाठी धारण करे और सोदकम कमंडलम जलभरा कमंडल, यज्ञोपवीतम वेदम च सुभे रेकमे कुंडले। यज्ञोपवीत वेद सुवर्ण से निर्मित सुंदर के कुंडल धारण करे। अगले श्लोकों में अर्थात 37, 38 और 29वें श्लोक में भगवान त्याज्य बातों के बारे में बताते हैं। नेक्षतोऽद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं न भसोगतम्। उद्यन्तं मरतं यन्तं आदित्यं कदाचन न इच्छते, उदय होते हुए अष्ट होते हुए सूर्य को कभी नहीं देखना चाहिए। नोपसृष्टं वारिस्थं न नभसा मध्यं गतम्, न ग्रहण लगे न जल में प्रतिबिंब वाले न आकाश के बीच में गए सूर्य को देखना चाहिए। मृदंगाम दैवते विप्रे घृतम मग्धुम चतुष्पथम प्रदक्षिणानि कुरवीत प्रज्ञातांश वनस्पतीन। मृदंगाम दैवतम विप्रम घृतम मधुम चतुष्पथम च प्रज्ञातान वनस्पतीन, अर्थात मिट्टी गाय देवस्थान ब्राह्मण घी शहद चौराहा और प्रसिद्ध अर्थात पूज्य वृक्षों जैसे पीपल बड़ आदि को प्रदक्षिणान कुर्वीत दाई ओर रख के जाए, अर्थात भगवान इन सब वस्तुओं के सम्मान के बारे में ऐसा श्लोक कहते हुए और 40वें श्लोक में रजस्वलागमन निषेध उससे हानि इस बारे में भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं, नोपगक्षेत्रमत्तोपि स्त्रियमार्थवदर्शने समानशयने चैव नशयेत तयाशः, अर्थात प्रमत्तः अपि, कामातर हुआ भी, आतर्वदर्शने, अर्थात रजस्वला के दिनों में स्त्रियम नोपगच्छेत, स्त्रियम नोपगच्छेत अर्थात स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, और तया न समासयनी नशयित, और उसके साथ एक बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। रजसाभिप्लुताम नारी नरस्य उपगक्षतः प्रज्ञातेजो बलम चक्षो रायुष्यैव प्रहीयते, क्योंकि रजसा अभिप्लुवाम नारी रजस्वला स्त्री की उपगक्षतः नरस्य, नर के पास जाने पर प्रज्ञा तेजः बलम चक्षु आयुः च प्रहीयते, बुद्धि तेज बल नेत्र ज्योति और आयु ये सब घट जाते हैं। भगवान 42वें श्लोक में रजस्वलागम गमन त्याग से लाभ के बारे में बताते हैं। रजसा समिभ्युताम विवर्जयस्तस्तस्य रजसा समिभ्युप्लुताम प्रज्ञां तेजो बलम चक्षुर आयुष्यम चैव प्रवर्धते। रजसा समभ्युप्लुता एवं विवर्जिता, रज निकलती व अर्थात रजस्वला स्त्री से सहवास न करने वाले उस मनुष्य के प्रज्ञा तेज बलम चक्षुः च आयु च प्रवर्धते, बुद्धि तेज बल नेत्र ज्योति और आयु ये सब बढ़ते हैं। अगले श्लोकों में भगवान अर्थात 43वें श्लोक में किन अवस्थाओं में स्त्री को नहीं देखना चाहिए, उन अवस्थाओं का वर्णन करते हुए विधान करते हैं। नाश्ने याद भार्या सार्धम नैनामी ते चाश्नतीम क्षुत्रतीम जम्भ्रमाणाम वा न चासीनाम यथा सुखम। भार्या सार्धम नाश्नीयात, स्त्री के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, और एनाम अश्नतीम नैक्षेत, इसको खाते हुए नहीं देखना चाहिए, छुवतीम छींकती हुई नहीं देखना चाहिए, जम्भमाणाम जमुआई लेती हुई नहीं देखना चाहिए, तथा यथा सुखम आसीनाम न, मनमाने आसन से सुखपूर्वक बैठी हुई को नहीं देखना चाहिए, ऐसा अधर्म होता है। नां च जयंतीम स्वेके नेत्रेण चाभ्यक्ता मनाव्रतां न पश्येत प्रशवंतीम च तेजस्कामो द्विजोत्तमः। स्वेके नेत्रे अंजयंतीम, अपने नेत्रों को अंजन लगाती हुई, अनावृत्ताम अभ्यक्ताम अर्थात नग्न होकर तेल लगाती हुई नहाती हुई, प्रसन्नवतीम अर्थात प्रसव के समय, तेजस कामः द्विजोत्तमः न पश्येत, तेज की कामना रखने वाला द्विज उसको नहीं देखता अर्थात न देखे। भगवान अगले श्लोकों में नानान मद्यादेक वासान नग्न स्नानम आचरेत न मूत्रम पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे न फालकृष्टे न जले न चिंत्याम न पर्वते न जीर्ण दैवता यतने न वल्मीके कदाचन न सत्सत्वेषु गर्तेषु गच्छन्नापि नश्च स्थियः न नदीतीरमाशाद्य न च विपर्वतमस्तके। कई स्थानों पर, इन सब स्थानों पर मलमूत्र त्याग करने का भगवान मना करते हैं। वायव्यग्नि विप्रमादित्य मपः पश्यंस्तथैव गा न कदाचन कुर्वीत विन्मूर्तस्य वर्जनम्। तिरस्कृतो चरित काष्ठ लोष्ठ पत्र त्रणादिना नियम्य प्रयतो वाचम संवीतांग गुंठितः। लकड़ी मिट्टी का ढेर शाखा घास आदि की ओट करके छिपा कर प्रयत्न पूर्वक वाणी पर संयम रखते हुए शरीर को कपड़े से ढककर अंगों को शरीर को इकट्ठा करते हुए संकुचित सा करके त्याग करना चाहिए। मूत्रोच्चारण के समय मूत्रोच्चार समुत्सर्गम दिवाकुर्याद्वयंमुख दक्षिणाभिमुखो रात्रो संयोयस्य चथा द्विजा। अर्थात दिवा तथा सांध्यो दिन में तथा दोनों संध्याओं में उदंग मुख की ओर मुख करके रात्रौ दक्षिण अभिमुखः रात्र में दक्षिण की ओर मुख करके उच्चार समुत्सर्गम कुर्यात् जिस किसी प्रकार सुख का अनुभव करे उधर मुख करके मलमूत्र का त्याग करे। छायायां अंधकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः यथा सुख सुख मुखः कुर्यात् प्राणबाधा भवेषु च प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदिकं द्विजान् प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मे हितः। प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं प्रतिसोमं उदक द्विजां प्रतिगां च प्रतिवातं। अग्नि के सामने सूर्य के सामने चंद्रमा जल ब्राह्मण गाय हवा इनकी ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रजानस्यंत प्रज्ञानस्यंति प्रज्ञा बुद्धि नष्ट करती है और अन्य त्याज्य बातों के बारे में भगवान कहते हैं नाग्निम मुखेनोपधाय मेन्नग्नाम नेक्षतेश्च स्त्रियं नामेध्यं प्रक्षिपेक्षग्नौ न च पादौ प्रतापयेत। अग्निम मुखेन न उपधमेत आग को कभी मुख से न फूके और नग्नाम स्त्रियम नहीं छेत नग स्त्री को नहीं देखना चाहिए। अग्नौ अमेध्यम न प्रक्षेपेत अग्नि में कोई गंदी वस्तु विष्टा इत्यादि या कूड़ा इत्यादि नहीं फेंकना चाहिए और पादौ न प्रतापयेत आग में पैरों को न सेके। अधस्तान्नोपधाक्ष न चैनमभिलंघयेत न चैनम पादतः कुर्यान् प्राणबाधमाचरेत। तथा इस आग को अधस्ताद न उपधत्यात् खाट आदि के नीचे न रखे और एनम न अभिलंघयेत और इसे कभी नहीं लांघना चाहिए। न चैनम पादतः कुर्यात् और न इसे पैरों से स्पर्श करना चाहिए। प्राण बाधम न आचरेत ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे प्राणों का भय हो। नाश्नीयात् संधिवेलायां न गक्षेन्नापि संविशेत न चैव प्रतिलिखेत भूमिं नात्मनोपहरे स्रजम्। संधिवेलां संध्या के समय नाश्नीयात् नहीं खाना चाहिए न गक्षेत कहीं रास्ते पर नहीं जाना चाहिए न संवसेत सोना नहीं चाहिए संध्या के समय और न भूमि प्रतिलिखेत और भूमि को नहीं कुरेदना चाहिए संध्या के समय में। न आत्मानः स्रजम उपहरेत और अपने गले में अपनी माला को एक दूसरे को पहनाना नहीं चाहिए। नाप्सुमूत्रं पुरे संवा स्थीवनं न वा समुत्रजेत अमेध्यलिप्तमद्वन्या लोहितं वा विषाणि वा। अप्सुमाने जल में मूत्रं पुरेशं स्थीवनं लोहितं वा विषाणि वा अन्यत् अमेध्यलिप्तं पेशाब, विष्ठा, थूक, खून अथवा विष अपवित्र वस्तु करने वाली लिपि कोई न समुत्सृजित वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए। जल में नैकः सुप्यां शून्य गेहे श्रेयांशन प्रबोधयेत् नोदक्याभिभाषेत यव्यं गक्षेन्न चावृतः। शून्य गेहे एकः न सुप्यात्, शून्य घर में अकेला नहीं सोना चाहिए। श्रेयांश न प्रबोधयेत्, अपने से बड़े सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए। उदक्यान अभिभाषेत, रजस्वला से बातचीत नहीं करना चाहिए। च अवर्तम यज्ञम नगक्षेत, बिना वर्ण किए हुए ऋतुज बनकर यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। अग्न्यागारे गवाम गोष्ठे ब्रह्मणानां च सन्निधो स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्। अग्नि आगारे अग्निशाला में, गवाम गोष्ठे गौशाला में, ब्राह्मणानां सन्नद्धौ ब्राह्मणों के पास, वेद अध्ययन के समय तथा भोजन में दक्षिणं पाणम उद्धरेत्, कपड़े से दाहिनी भुजा को बाहर रखे। नवारे गाम धयंतीम न चाक्षेत कस्यचित् नदिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचित् दर्शयेत् बुधा। धयंतीम गाम नवारयेत्, जल पीती हुई गाय को नहीं हटाना चाहिए। न कस्यचित् आचक्षति और न किसी को बताए, बुधा बुद्धिमान को चाहिए कि दिव्य दिन में इंद्रधनुष को देख कर किसी को न दिखाए। नाधर्मिके वशेत ग्रामे न व्याधि बहुले भ्रसम नहीं कह प्रपे पद्यते ध्यावानम न चिरम पर्वते वशेत। आधर्मिकों के गांव में नहीं रहना चाहिए, न ऐसे गांव में रहे जहां भी बहुत बीमारी फैली हो। अकेला किसी निर्जन मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, पहाड़ पर बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए। न शूद्र राज्ये निवसे न धार्मिक जनावृते न पाखंडी गणाक्रांते नोपसृष्टेन्य जैनरभिः। द्विज, शूद्र के राज्य में नहीं रहना चाहिए और आधार्मिक जन आवृते न, अधार्मिक लोगों से घिरे हुए राज्य में भी नहीं रहना चाहिए। पाखंडी गणे आक्रांति, पाखंडियों के समूहों में से घिरे अंत्यजयी नभी उपसृष्टे, शूद्र या चांडाल लोगों से घिरे या भरे गांव में भी नहीं बसना चाहिए। न भुंजे तो ध्रत स्नेहम नाति सौहित्यमाचरेत नाति प्रगे नाति सायम न सायम प्रातराशितः। उद्धत स्नेहम न बुज्जीत, जिसमें से चिकनाई निकाल दी गई है ऐसे पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। अति सौहित्यम न आचरित, बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। न अति प्रज्ञे और न बहुत सवेरे, न अतिशयाम न बहुत शाम बीते, प्रातः आशितः न सायम, प्रातःकाल यदि बहुत खा लिया है तो सायं को नहीं खाना चाहिए। न कुर्वीत यथा वेष्टाम न वार्यंजलिनाम पिबेत न संज्ञम भक्षेद्यन्यान जातु स्यात् कुतूहली। वृथा चेष्टाम न कुर्वीत, व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं करना चाहिए। अंजलिना वार्य न पिबेत, अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए। भक्षान उत्संगे न भक्षेन, खाने के पदार्थों को गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। जान कुतूहली न स्यात, बिना के प्रयोजन के बात जानने की इच्छा नहीं करना चाहिए। नन्नेता अथवा गायन्ते गायेन वादित्राणि वादयेत न स्फोटयेन न चैवेणेव न रक्तो विरावयेत। न नृत्येन अथवा गोयेत और न नीचे और न गाये, वादित्राणि वाजेत और वाजे न बजाए, न अस्फोटायेत न ताली बजाए, न क्वेंगेत अर्थात दांतों को गिड़कराए और रक्ता न विरावेत अनुभाव में मग्न होकर अभद्र शब्द न प्रयोग करे। न पादौ धावेत कांशे कदाचिदपि भाजने, न भिन्न भाण्डे भुञ्जीत न भाव प्रतिचोदित दूषिते। कांशे भाजने कदाचित अपि पादौ न धावेत, कांशे के बर्तन में कभी पैर नहीं धोना चाहिए। भिन्न भाण्डे न भुञ्जीत, टूटे बर्तन में नहीं खाना चाहिए। भाव प्रतिदूषते दूषिते न, मन को प्रिय लगने वाले बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। मन को प्रिय न लगने वाले बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। उपान हो न वाशस्य धृतमन्यैर्न धारयेत, उपवीत मलंकारम सजम करके मेव च। अन्नै घृतम उपनहौ च वासः न धारयेत। दूसरों द्वारा एक बार धारण किए गए जूते और वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। उपवीतम अलंकारम सृजम च कारकम एव, यज्ञोपवीत आभूषण माला और कमंडल को, दूसरों के द्वारा धारण किए गए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। सवारी किन पशुओं की करना चाहिए और किन की नहीं करना चाहिए, इनके बारे में 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ना विनीतैर व्रजेत धुर्यैर, न क्षुद्दव्याधि पीड़ितैर, न भिन्न श्रृंगाक्षिर खुरैर, न व्यादा विरोक्षिपितै, न बिना सिखाए हुए भूख और रोग से पीड़ित, जिसके सींग रेत्र और खुर टूट गए हैं, जिसकी पूंछ कटी तथा घायल हो, ऐसे घोड़े बैल आदि पशुओं पर न चढ़कर जाए। विनीतैस्तु ब्रजेन नित्यम आशुगैर्लक्षणान्वितै, वर्णैरूपोपसंपन्नै प्रातोदेता देतान्तुदन्भृशम्। सिखाए हुए लक्षण अन्वितै, सुंदर लक्षणों से युक्त, सुंदर रूप से युक्त शीघ्रगामी पुरुषों से प्रतोदीनम भृशम अदंतुन, चाबुक के मार्ग से बहुत पीड़ा न देता हुआ ब्रजे सवारी करे। बाल सूर्य दर्शन आदि के बारे में, निषेध के बारे में भगवान कहते हैं, बाला तपह प्रेत्य धूमो वर्ज्य भिन्नम तथा शनम, न क्षिद्यान्न न खलो मानी दैत्यर्णोपाटयेन नखम। बाल सूर्य की धूप, प्रेत धूमा जलते हुए मुर्दे का धुआं, अर्थात भिन्नम आसनम वर्जित, फटा हुआ आसन इनको छोड़ देना चाहिए। नखलोमान न छिन्नात, नाखून और रोमों को नहीं थोड़ना फोड़ना चाहिए। नाखान दंतई न उत्पाटेत, नाखूनों को दांतों से नहीं उखाड़ना चाहिए। नम्रलोष्ठम नम्र मृदीनीयान क्षिद्यान्त्यात् करजैस्तृणम, न कर्म निष्फलम कुर्यात् न यत्यादम सुखोदयम्। मुदलोष्ठम नम्रदनीयात, मिट्टी के ढीले को हाथ से न मसले। करजई है तृणम न छिन्नात, उंगलियों से तिनकों को न तोड़े। निष्फलम अयत्याम असुखम उदयम न करयात, बिना प्रयोजन वाला कोई भविष्य में जिससे दुख प्राप्त हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोष्ठमरदी तृणक्षेदी नखादी चयो नरह, सविनाशम व्रजत्याशु सूचिको चिरवेव च। ढेले को मलने वाला, तिनकों को तोड़ने वाला, नाखूनों को दांतों से काटने वाला, सूचकः चुगलखोर और अशुचि अपवित्र रहने वाला यह नरः, जो मनुष्य है, वह आशु विनाशम व्रजति, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। न विगर्ह कथाम कुर्यात् बहिर्माल्यम न धारयेत्, गवाम चयनायान पृष्ठेन सर्वथैव विगर्हितम्। विगैह कथाम न कुर्यात्, उन उद्दंडसा से बहसबाजी की बात नहीं करे। माल्यम बहिः न धारयेत्, माला को वस्त्रों के बाहर नहीं पहनना चाहिए। और गवाम पृष्ठेन यानम, और गवों की पीठ पर चढ़कर सवारी करना सर्वथा निंदनीय काम है। अद्वारेण चनीयानातीयात् ग्रामं च वेश्मवावृतं रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्। व्रतं ग्रामं वा वेश्म परकोटा से घिरे गांव या घर को अद्वारेण न आतियात, बिना द्वार वाले स्थान से कूद फाद कर जाए। रात्रौ रात के समय वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्, वृक्षों की जड़ों को दूर से छोड़ कर जाए। नाक्षै क्रीडेत कदाचित् स्वयं नापानहौ हरेत्, शेनस्थौ न भुञ्जेथ न पाणिस्थं न चासने। अक्षय कदाचित् तु न क्रीडेत, जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। उपानहो स्वयं न हरेत, जूतो अपने हाथ में न लेकर चले। शयनस्था न भुंजित, सोते हुए लेटे हुए कभी न खाए। न हाथ पर खाने वाली वस्तु रख कर खाए, न आसने न बैठने के आसन पर खाने की वस्तु रख कर खाए। सर्वम चतिलम संबद्धम नाद्यास्तमिते रजौ रवौ, न च नग्नः सईतेह न चोष्ठेष्ठम क्वचिद्रवेत। श्लोक में सूर्यास्त होने पर तिल से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए। नग्नः न शयित, पलंग आदि पर कभी नंगा होकर नहीं सोना चाहिए। उच्चिष्ठा क्वचित न ब्रजेत, जूठे मुंह हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। आर्दपादस्तु भुञ्जेथ नार्दपादस्तु संविशेत, आर्दपादस्तु भुञ्जयन् जानो दीर्घमायुरमाप्नुयात। आर्दपादस्तु भुञ्जेत, पैर धोकर भोजन करना चाहिए, किंतु आर्दपादः न संविशेत, गीले पांव नहीं सोना चाहिए। पांव धोकर खाने वाला लंबी आयु को प्राप्त करता है। अक्षक्षुर विषयम दुर्गम न प्रद्ये प्रपद्येत कर्हिचित, न ब्रह्मोत मुदीक्षेत न बाहुभ्याम न दीतरेत। जो कभी आँखों से देखा न हो, ऐसे किले में कभी नहीं जाना चाहिए। विष्टा और मूत्र को कभी नहीं देखे, भुजाओं के सहारे से कभी नदी को पार करने का प्रयास न करे। आधिष्ठे न केशास्तु न भस्मास्थि कपालिका, न करपाशास्ति न तुषां दीर्घमायुर्जीविषु। लंबी आयु चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह बाल राख हड्डी ठीकरा कपास की लकड़ी को भूस, इन पर नहीं बैठना चाहिए। दुष्टों का संग न करे, इस बारे में भगवान कहते हैं। न सम्मशे च पतिर्ते न चांडालैर्न पुष्कलैः न मूर्खैनावलिप्तैश नान्तेर्यनान्त्यावाशिभिः। सज्जन गृहस्थ लोगों के योग्य है कि न पतितैः नान्तैः न चांडालैः न पुष्कलैः, जो पतित दुष्कर्म करने वाले करने हारे हों, न उनसे, न चंडाल न कंजर, न मूर्खई न अवलिप्तई, न मूर्खई अवलिप्तई न अन्य अवशायी भी संवसित, न मूर्ख न मिथ्याभिमानी और न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी निवास नहीं करना चाहिए। शूद्र को उपदेश आदि का निषेध देते हुए भगवान कहते हैं कि शूद्र को उपदेश नहीं देना। न शूद्रमतिम न शूद्राय मतिम दद्यान, नोचिष्टम न हविष्कृतम न चास्योपदिशे धर्मम न चास्य व्रतमादिदेश। शेत शूद्राय मतिम उच्छिष्टम हविष्कृतम न दद्या, शूद्र को शिक्षा जूठा भोजन हवन का शेष भोजन प्रसाद में नहीं देना चाहिए। और अस्य धर्मम न उपदिशेत, इसको कभी धर्म का उपदेश भी नहीं करना चाहिए। अस्य व्रतम न आदिशेत, इसको कभी व्रतों का उपदेश भी नहीं करना चाहिए। यो ह्यस्य धर्ममाचिष्टे यश्चैवादिशि ब्रजम् सो संव्रतम नाम तपः सह नैवेय मञ्जति। क्योंकि जो इस शूद्र को धर्म का उपदेश देता है, जो व्रत का उपदेश देता है, वह उपदेश करने वाला असंव्रत नामक नरक में शूद्र के साथ ही जाकर डूबता है। न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डो येदात्मनः शिरः न स्प्रसेक्चैतद्दुःखिष्टो न च स्नायाद्विनातनः। संहताभ्यां पाणिभ्यां आत्मनः शिरः न कण्डुवेत्, दोनों हाथों से एक साथ अपने सिर को न खुजलाए, और एतत् उच्छिष्टम न स्पृशेत्, सिर को जूठे हाथ कभी नहीं छुए, ततः बिना न स्नायात्, सिर को पहले धोए बिना स्नान न करे। केशान प्रहारांश केशग्रहान प्रहारांश शिरण्येतान विवर्जयेत् शिरः स्नातश्च तैलेन नांगं किञ्चिदपि स्पृशेत्। शिरसि केशग्रहान च प्रहारान एतान विवर्जयेत्, सिर के बालों को पकड़कर लड़ना और सिर पे चोट मारना, इन दोनों बातों को छोड़ देवे। शिरः स्नात तेलेन, सिर में तेल लगाकर किंचित अपि अंगम न स्पृशेत्, उस हाथों से किसी अन्य को अंग को नहीं छूना चाहिए। अक्षत्रिय राजा के दान का निषेध करते भगवान कहते हैं, नराज्ञः प्रतिग्रहीण्याद अराजन्य प्रसूतितः सूनाशक्रध्वजा ध्वजवतां वशेनैव न च जीवितां। अराजन प्रसूतितः राज्ञः, जो क्षत्रिय से उत्पन्न न हो ऐसे राजा से न प्रतिगृह्यात् दान नहीं लेना चाहिए। सूनाचक्रम ध्वजवतां च वेशेन च एव जीवितां न, कसाई कुम्हार शराब बेचने वाले और वेश बदल कर जीविका रखने वालों से भी दान नहीं लेना चाहिए। दशशूनां समं दशशूनाशमं चक्रम दशचक्र समो ध्वजः दशध्वज समो वेशो दशवेश समो नृपः। दशशूनां समं चक्रम, दस हत्या के समान चक्र अर्थात कुमार गाड़ी से जीविका करने हारे दस चक्र समान ध्वजः, दस चक्र के समान ध्वज अर्थात धोबी मध्य को निकाल कर बेचने हारे। दशध्वज के समान वेश अर्थात वैश्या भणुआ भाण दूसरे की नकल अर्थात पाषाण मूर्तियों के पूजक पुजारी आदि, दशवेश समान अन्यायकारी राजा होता है, उनके अन्न आदि का अतिथि लोग कभी न ग्रहण करें। दशशूना सहस्राणि यो वाहयति शौनकः तेन दुल्यस्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः। यह सैनिकः जो कसाई दशशूना सहस्राणि वाहयति, 10,000 हत्याएं करता है राजा, तेन तुल्यः स्मृतः, राजा को उसके समान समझा गया है। तस्य प्रतिग्रह घोरा, उसका दान ग्रहण करना बड़ा भयानक समझा गया है। अक्षत्रिय राजा से दान लेने से नरक प्राप्ति, इस बारे में भगवान कहते हैं, यो राज्ञः प्रतिग्रहणाति लुब्धस्योक्षात्रवर्जिनः सपर्याणेन यातीमान नरकानेकविंशितम्। जो लोभी शास्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले राजा का दान ग्रहण करता है वह 21 नरकों में क्रम से जाता है। तस्तमिश्रम मंदता मिश्रम महारौरवरौरवो नरकम कालसूत्रम च महानरकमेव च संजीवनम महावेचिम तपनम संप्रतापनम संहातम च सुकाकुलम कुंभलम प्रतिमूर्तिकम लोहशंकु मृजीशम च पंथानम शाल्मीकी नदीम अशीपत्रजनम चैव लोहदारकमेव च। तामिश्र अंधतामिश्र महारौरव और रौरव कालसूत्रक और महानरक महावीचिम तपनम संप्रतानम सहांतम ये सब नरक हैं, इस प्रकार के 21 नरक हैं। एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्रह्मणा ब्रह्मवेदिनः नराज्ञः प्रतिगृह्णन्ति पेत्रश्रेयोभिकाङ्क्षिणः। एतद्विदन्ति, यह बात को जानते हुए प्रेत्य श्रेयः अभिकाङ्क्षिणः परलोक में कल्याण चाहने वाले ब्रह्मवेत्ता विद्वान ब्राह्मण राजा से दान नहीं लेते। अगले श्लोकों में भगवान कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ काय क्लेशांच शरीर के रोगों और उनके कारणों को वेद तत्वार्थम एव अनुचिंतित परमार्था का परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। कभी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। संध्योपासना आदि नित्य चर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति होने के बारे में भगवान कहते हैं उत्थायावश्यकम कृत्वा कृतशौचम समाहितः पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठेत स्वकाले चापरां चिरम। उत्थाय माने उठकर, आवश्यकम कृत्वा दिनचर्या के आवश्यक शौचा इत्यादि कार्य करके कृतशौचम स्नान आदि करके पवित्र होकर समाहितः पूर्व संध्या जपन चिरम तिष्ठेत प्रातःकालीन संध्योपासना करने के लिए देर तक बैठना चाहिए और स्वकाले उपयुक्त समय पर अपराम संध्या काल पर भी संध्या उपासना इत्यादि करे। ऋषयो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घमायुरवाप्नुयः प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्च समेव च ऋषया मन्त्रार्थ दृष्टा। ऋषि मंत्रार्थ दृष्टा ऋषियों ने देर तक संध्योपासना करने के कारण लंबी आयु वृद्धि बुद्धि यश प्रसिद्धि और ब्रह्म तेज को प्राप्त किया है। श्रावणी उपाकर्म के बारे में भगवान कहते हैं श्रावण्याम प्रोष्ठपद्याम वा अप्युपाकृत्य यथा विधि युक्त छंदांश्यधीतीय माशान विप्रोरध पंचमान। श्रावण्याम अपि वा प्रोष्ठपद्याम श्रावणी अथवा भाद्रपद पूर्णमासी को यथाविधि उपाकृत्य विधिपूर्वक उपक्रम अनुष्ठान करके विप्रह अर्धपंचमान मासान साढ़े चार मास तक लग्नपूर्वक वेदाध्ययनों में करें।